कल्पना कीजिए कि हम किसी ऐसी अदालत में खड़े हैं जहां का जो जज है ना, वो हमारी हर सोच हर इरादे को जानता है।
हाँ, और मतलब ऐसी जगह जहां आपने जो बातें किसी से शेयर नहीं की वो भी उस जज को बताएं।
बिल्कुल, एक ऐसी ट्रांसपेरेंट नजर जिससे हम कुछ भी छुपा नहीं सकते। उस नजारे के सामने खड़े होने का ख्याल ही एक अजीब सा डर पैदा करता है ना।
एकदम, इंसान की फितरत ही यही है कि वो किसी ऐसी नजर से बचना चाहता है जो उसकी सारी कमजोरियों को या उसके सारे फ्लॉज को उजागर कर दे।
लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ठीक वही जज जो हमारी हर कमजोरी को जानता है अचानक से हमारा सबसे बड़ा रक्षक और हमदर्द बन जाए?
ये तो बहुत ही मतलब एक गहरा विरोधाभास है, क्योंकि क्लैरिटी डरावनी होती है, पर अगर उस क्लैरिटी में बिना शर्त की सहानुभूति मिल जाए तो डर बिल्कुल खत्म हो जाता है।
सही बात है, और यहीं से हमारी आज की इस गहरी चर्चा की शुरुआत होती है। आज हम उन विचारों पर एक गहन अध्ययन करने वाले हैं जो डॉक्टर डेविड ए. डी. सिल्वा के एक बहुत ही दिलचस्प एनालिसिस पर आधारित हैं।
हाँ, और ये एनालिसिस एक प्राचीन ग्रंथ पर फोकस करता है जिसे इब्रानियों का पत्र या हिब्रूज कहा जाता है, खासतौर पर इसके अध्याय 4 और 5 पर।
हाँ, अध्याय 4 के पद 14 से लेकर अध्याय 5 के पद 10 तक। हमारा मेन मिशन आज ये समझना है कि इस प्राचीन टेक्स्ट में यीशु को एक महान महायाजक यानी ग्रेट हाई प्रीस्ट के रूप में कैसे दिखाया गया है।
और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि हम ये देखेंगे कि हजारों साल पहले लिखी गई ये बातें आज की इस भागदौड़ भरी और स्ट्रेस वाली जिंदगी में सुनने वालों के लिए क्या मायने रखती हैं।
चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इन ऐतिहासिक पन्नों में उतरें, मैं हमारे सुनने वालों के लिए एक बहुत ही जरूरी बात क्लियर करना चाहती हूँ।
हाँ, ये डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, देखिए हमारा मकसद यहाँ किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाना या किसी खास मान्यता को प्रमोट करना नहीं है। हम यहाँ जो भी डिस्कस कर रहे हैं ना, वो प्योरली सोर्स मटेरियल में दिए गए ऐतिहासिक और साहित्यिक विचारों का एक निष्पक्ष विश्लेषण है।
सही का।
हम तो बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस वक्त के लेखक के दिमाग में क्या चल रहा था और उन्होंने अपने समाज को समझाने के लिए यही स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट्स क्यों चुने।
एकदम, तो चलिए उस डर और आत्मविश्वास वाले कॉन्ट्रास्ट पर वापस आते हैं। हिब्रूज के अध्याय 4 में ना, लेखक ने शुरू में पढ़ने वालों के मन में एक डर पैदा किया था कि अगर वो भटक गए तो उस ईश्वर का सामना कैसे करेंगे, हाँ, जिसकी नजर से कुछ भी छुप नहीं सकता।
राइट, लेकिन अगले ही पल पद 14 से 16 में वो डर अचानक से एक कॉन्फिडेंस में, एक आत्मविश्वास में बदल जाता है। तो ऐसा क्या हुआ कि डर की जगह लेखक कह रहा है कि अब निडर होकर सामने आओ?
इस बदलाव का जो सबसे बड़ा रीजन है वो वही महायाजक है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की। लेखक कहता है कि ये एक ऐसा माध्यस्थ है यानी मीडिएटर है जो स्वर्ग से होकर गुजरा है।
स्वर्ग से होकर गुजरा है,
मतलब
इसका उस वक्त के हिसाब से क्या मतलब था?
इसे समझने के लिए हमें उस दौर की कॉस्मोलॉजी यानी उनकी ब्रह्मांड की समझ को देखना होगा। उस वक्त लोग मानते थे कि जो आकाश हम देखते हैं, चांद, तारे, ये फिजिकल दुनिया, ये सब टेम्प्रेरी है।
अच्छा, मतलब ये सब नश्वर है। ओह, यानी उन्होंने उस टेम्प्रेरी बॉर्डर को क्रॉस कर लिया है और सीधे सोर्स तक पहुंच गए। वाह, इसे सुनकर ना मुझे आज की दुनिया का एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल याद आ रहा है।
जरूर बताइए।
मान लीजिए किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का एक सीईओ है, लेकिन वो ऐसा सीईओ नहीं है जो सीधे किसी बड़े मैनेजमेंट कॉलेज से निकलकर टॉप फ्लोर के एसी रूम में बैठ गया हो।
अच्छा, तो कैसा सीईओ है
ये? वो इंसान है जिसने सालों तक फैक्ट्री के फ्लोर पर एक आम वर्कर की तरह पसीना बहाया है। उसने हैवी मशीन्स चलाई हैं, ओवरटाइम किया है और एक आम एम्प्लॉय की हर थकान और फ्रस्ट्रेशन को प्रैक्टिकली झेला है।
हाँ, और फिर जब ऐसा इंसान टॉप पोस्ट पर पहुंचता है तो वो सिर्फ हवा में ऑर्डर्स नहीं देता।
एकदम सही, उसे हर एम्प्लॉय के स्ट्रगल से, उनकी कमजोरियों से एक गहरी एम्पैथी होती है, एक सहानुभूति होती है।
अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो आपका ये एग्जाम्पल इस टेक्स्ट की फीलिंग को बिल्कुल परफेक्ट कैप्चर करता है। यहां यीशु को सिर्फ एक पावरफुल मीडिएटर नहीं बताया गया है, बल्कि एक ऐसा ब्रोकर बताया गया है जिसने इंसानों की तरह हर टेस्ट का, हर पेन का जमीनी स्तर पर सामना किया।
तो इसका मतलब उन्हें हमारी हर वीकनेस से सहानुभूति है।
हाँ, लेकिन लेखक यहां एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी बताता है। उन्होंने ये सब बिना कोई पाप किए यानी बिना कोई रूल तोड़े फेस किया।
लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा डिसएग्री करना चाहूंगी। मेरा मतलब है, अगर उन्होंने कभी कोई गलती की ही नहीं, कोई नियम तोड़ा ही नहीं, तो क्या वो सच में उस आम वर्कर के मेंटल स्टेट को समझ सकते हैं?
ये आप बहुत वैलिड पॉइंट उठा रही हैं।
कि अक्सर हम देखते हैं कि जो इंसान कभी लाइफ में फेल नहीं होता ना, वो फेल होने वालों के प्रति थोड़ा स्ट्रिक्ट, थोड़ा कठोर हो जाता है। क्या ये पाप रहित होने की बात उन्हें इंसानों से थोड़ा दूर नहीं कर देती?
ये एक बहुत ही कॉमन और अच्छा सवाल है, पर आप इसको इस तरह से सोचिए, किसी टेम्पटेशन या लालच का असली प्रेशर वो इंसान नहीं जानता जो उसके आगे हार मान लेता है।
अच्छा, कैसे?
क्योंकि जिसने हार मान ली उसने तो प्रेशर से छुटकारा पा लिया ना। लालच का जो 100% वजन और दर्द है वो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जो आखिरी दम तक उसके खिलाफ खड़ा रहे और कभी ना टूटे।
ओह वाह, ये पर्सपेक्टिव तो सच में बहुत अलग है। मतलब हार ना मानने की वजह से उन्होंने उस स्ट्रगल की पीक को, उसकी चरम सीमा को महसूस किया।
बिल्कुल, और यही पूरा एक्सपीरियंस उन्हें एक परफेक्ट मीडिएटर बनाता है, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल को उसकी डेप्थ में फील किया है तो वे इंसानों का दर्द ईश्वर के सामने रख सकते हैं।
और क्योंकि वो पाप रहित हैं तो बिना किसी शर्म या डर के खड़े हो सकते हैं।
सही,
एकदम।
इसीलिए लेखक अपने सुनने वालों से कहता है कि अब छिपने की जरूरत नहीं है, तुम पूरे आत्मविश्वास के साथ कृपा के सिंहासन यानी थ्रोन ऑफ फेवर के पास जा सकते हो। वहां तुम्हें सजा नहीं बल्कि एक ऐसा हमदर्द मिलेगा जो तुम्हारा दर्द समझता है।
सहानुभूति का ये लॉजिक बहुत खूबसूरत है, लेकिन देखिए, सिर्फ सहानुभूति होने से तो कोई इतने बड़े पोस्ट पर नहीं बैठ सकता ना। मेरा मतलब है, कोई भी उठकर ये तो नहीं कह सकता कि मुझे लोगों से बहुत हमदर्दी है तो मैं ईश्वर और इंसानों के बीच का सुप्रीम मीडिएटर बनूंगा। इसके कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स तो होंगे।
हाँ बिल्कुल, रूल्स थे, और यहीं पर लेखक उस याजक यानी प्रीस्ट के जॉब डिस्क्रिप्शन को एक्सप्लेन करता है। अध्याय 5 की शुरुआत में वो पुराने लेविटिकल प्रीस्ट्स यानी लेवी वंश के याजकों की बात करता है,
जिनका काम इंसानों और ईश्वर के बीच एक ब्रिज बनना था।
हाँ,
है ना?
हाँ, वो लोगों की तरफ से सैक्रिफाइस और भेंट चढ़ाते थे, लेकिन उस पुराने सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमी थी।
वो कमी क्या थी?
कमी ये थी कि वो याजक खुद भी बहुत कमजोर इंसान थे, तो जब वो प्रायश्चित के दिन यानी डे ऑफ अटोनमेंट पर, जो उस वक्त का सबसे पवित्र दिन था, जब वो ईश्वर के सामने जाते थे तो उन्हें पहले खुद अपने पापों के लिए बलि देनी पड़ती थी।
मतलब पहले खुद को साफ करना पड़ता था।
बिल्कुल, उन्हें पहले एक बैल का खून अपने और अपने परिवार की गलतियों के लिए चढ़ाना पड़ता था, तब जाकर वो आम जनता के लिए प्रायश्चित कर सकते थे। और हाँ, ये सब सिर्फ अनजाने में हुई गलतियों के लिए था, जानबूझकर किए गए अपराधों के लिए नहीं।
लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी डिस्क्रेपेंसी, एक बहुत बड़ी उलझन नजर आ रही है।
कैसी उलझन?
अगर हम हिस्ट्री देखें तो इसराइल में कानून बहुत सख्त थे। याजक बनने का हक सिर्फ और सिर्फ लेवी गोत्र के लोगों को था। अगर कोई और, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इस पवित्र जगह पर जाने की कोशिश करता तो उसे मौत की सजा मिलती थी।
हाँ, ये बात तो तय थी।
तो फिर यीशु, जो हिस्टोरिकली लेवी गोत्र से नहीं बल्कि यहूदा गोत्र से थे, वो इस टॉप पोजिशन पर कैसे आ गए? क्या ये रूल्स को तोड़ना नहीं था? उस वक्त के लोग तो इस पर तुरंत हल्ला मचा देते।
आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये एक ऐसा लॉजिकल ऑब्जेक्शन है जो उस वक्त किसी भी सुनने वाले के दिमाग में सबसे पहले आता, लेकिन लेखक इस कानूनी उलझन को बहुत ही स्मार्टली उन्हीं के पुराने टेक्स्ट्स का यूज करके सुलझाता है।
अच्छा, वो कैसे करता है ये?
वो क्लियर करता है कि कोई भी इंसान खुद को इस पोस्ट पर अपॉइंट नहीं करता, ये एक डिवाइन कॉलिंग होती है, ईश्वर बुलाता है। यीशु ने खुद को महायाजक डिक्लेयर नहीं किया, और इस बात का प्रूफ देने के लिए लेखक साम्स यानी भजन संगीता के 2 और 110वें भजन का हवाला देता है।
इन भजनों में ऐसा क्या लिखा था जिसने इस पूरे ट्राइब वाले कानून को ही पलट दिया?
यही तो सबसे बड़ी कानूनी दलील है। दूसरा भजन कहता है, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने ही तुझे उत्पन्न किया है। ये एक रॉयल डिक्री, एक शाही घोषणा थी। और 110वें भजन में ईश्वर सीधे कहता है, तू मल्कीसदेक की रीत पर सदा के लिए याजक है।
मल्कीसदेक?
ये कौन थे? ये एक बहुत ही मिस्टीरियस एंशिएंट किंग और याजक थे, जिनका जिक्र हिस्ट्री में लेवी वंश के बनने से भी बहुत पहले मिलता है।
ओह, तो लेखक एक्चुअली लेवी वंश से भी पुरानी एक ट्रेडिशन को वापस ला रहा है।
बिल्कुल सही पकड़ा आपने। असल में ये भजन यहूदा वंश के राजाओं जैसे राजा दाऊद के लिए गाया जाता था, और राजा का पोस्ट तो लेवी याजकों से ऊपर होता था ना।
हाँ, ये तो है।
तो लेखक का लॉजिक यह है कि यहाँ एक शाही आदेश पास हुआ है, और जब एक रॉयल डिक्री आती है तो वो पुराने ट्राइबल सिस्टम से ऊपर हो जाती है। ईश्वर ने उन्हें इस मलकी से देख के ऑर्डर में अपॉइंट किया, जो लेवी गोत्र के रूल से बिल्कुल बाहर और उससे कहीं ज्यादा सुपीरियर है।
सही, तो ये एक तरह से लीगली पुराने सिस्टम को बाईपास करना हो गया, पर पूरी वैलिडिटी के साथ।
हाँ, और इसमें एक और पॉइंट है, पुराने लवी याजक तो मर जाते थे ना, तो उनकी जगह किसी और को आना पड़ता था, लेकिन क्योंकि यीशु पुनर्जीवित हुए, उन्होंने डेथ को हरा दिया, तो भजन में जो लिखा है सदा के लिए, उसका मतलब अब लिटरली हमेशा के लिए हो गया है।
यानी अपॉइंटमेंट बिल्कुल ही एक अलग और हायर लेवल के लीगल सिस्टम से हुई। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अपॉइंटमेंट तो हो गए, पर इस पोस्ट के लिए उनकी तैयारी कैसे हुई?
ये बहुत ही गहरा सवाल है,
क्योंकि देखिए, आम तौर पर हम सोचते हैं कि जो ईश्वर का चुना हुआ है उसकी लाइफ तो बहुत इजी रही होगी, उसे तो सब कुछ आसानी से मिल गया होगा, है ना?
और यहीं पर ये टेक्स्ट हमें उनके ह्यूमन स्ट्रगल की, उनके संघर्ष की सबसे दर्दनाक सच्चाई दिखाता है। हिब्रूज 5:7 में लिखा है कि उन्होंने अपने ह्यूमन लाइफ के दिनों में बहुत जोर जोर से रोकर और आंसुओं के साथ उस पावर से दुआ की जो उन्हें मौत से बचा सकती थी।
जोरदार पुकार और आंसू, जब भी ये बात आती है तो लोग जनरली इसे सूली पर चढ़ने से ठीक पहले वाले उस एक डर के मोमेंट, उस गेथसेमनी के बगीचे की घटना से जोड़ते हैं। क्या डॉक्टर डिसिल्वा भी यही मानते हैं?
देखिए, ज्यादा लोग यही मानते हैं, पर डॉक्टर डिसिल्वा यहाँ हिस्ट्री की एक नई लेयर ऐड करते हैं। उनका कहना है कि लेखक के दिमाग में सिर्फ वो एक रात वाली घटना नहीं थी।
तो फिर क्या था?
अगर हम उस वक्त के सेकेंड टेम्पल पीरियड के लिटरेचर को देखें, जैसे मैकबीज की किताबें जिनमें यहूदियों पर हुए अत्याचारों की कहानियां हैं, तो वहां हम देखते हैं कि जो सबसे पवित्र लोग थे ना, वो क्राइसिस के टाइम पर ऐसी ही गहरी और आंसुओं भरी प्रार्थना करते थे।
ओ, तो आंसू बहाना कोई वीकनेस या डर की निशानी नहीं था?
एकदम नहीं। उस प्राचीन कल्चर में आफत के वक्त आंसुओं के साथ प्रार्थना करना एक सच्चे और धार्मिक इंसान की पहचान थी, जो ये मानता था कि वो कम्प्लीटली ईश्वर पर डिपेंडेंट है।
अच्छा,
ये उन्हें उस महान हिस्ट्री के एक आइडियल धार्मिक इंसान के रूप में एस्टैब्लिश करता है जिसने पेन का हर कड़वा घूंट पिया हो।
ये पॉइंट तो बहुत क्लियर हो गया, लेकिन ठीक इसके बाद एक सेंटेंस आता है जिसने मुझे पढ़ते वक्त थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था।
कौन सा सेंटेंस?
लेखक कहता है कि उनकी प्रार्थना इसलिए सुनी गई क्योंकि वो पुत्र थे, मतलब सन थे। अगर ऐसा है तो क्या यहाँ कोई नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद जैसा कुछ नहीं दिख रहा कि अरे ये तो अपना ही बेटा है, इसकी फाइल पहले आगे बढ़ा दो?
मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रही हैं, पर ये एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है, और ये होती है पुराने शब्दों के ट्रांसलेशन की वजह से।
अच्छा, ओरिजिनल वर्ड क्या था?
यहाँ ग्रीक भाषा में एक शब्द है काइपर, जिसका मतलब होता है हालांकि। कुछ लोग इसे ऐसे ट्रांसलेट कर देते हैं कि हालांकि वो पुत्र था, फिर भी उसने दुख सहकर आज्ञाकारिता सीखी।
हाँ, मैंने यही पढ़ा था।
लेकिन डॉक्टर डिसिल्वा लिंग्विस्टिक्स के बेस पर कहते हैं कि इस शब्द का रिलेशन पिछली लाइन से है। सही ट्रांसलेशन ये होना चाहिए, उसकी गहरी भक्ति और समर्पण की वजह से उसकी प्रार्थना सुनी गई, हालांकि वो एक पुत्र था।
ओह, तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या निकल कर आता है?
इसका मतलब ये है कि उनकी दुआ इसलिए नहीं सुनी गई क्योंकि उन्हें कोई VIP ट्रीटमेंट मिल रहा था, कोई नेपोटिज्म नहीं था। ईश्वर ने उनकी पुकार इसलिए सुनी क्योंकि उनका डेडिकेशन सच्चा था।
ये तो अनसुनने वालों के लिए बहुत बड़ा मैसेज रहा होगा।
बिल्कुल, अगर खुद पुत्र को कोई शॉर्टकट नहीं मिला और उन्हें भी अपनी भक्ति प्रूफ करनी पड़ी, तो इसका सीधा मतलब है कि सुनवाई पोस्ट से नहीं, डिवोशन से होती है।
ये सच में बहुत पावरफुल थॉट है कि कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। और इसके बाद जो बात आती है कि उन्होंने दुख सहकर ओबीडियंस यानी आज्ञाकारिता सीखी, यहाँ पर मुझे एक और फिलोसॉफिकल डाउट है।
हाँ, बताइए।
अगर वो डिवाइन पावर का हिस्सा थे तो वो तो सर्वज्ञानी, ऑल नोइंग होने चाहिए ना? एक ऐसी एंटिटी को आज्ञाकारिता सीखने की क्या जरूरत पड़ गई? ये तो उनकी नॉलेज पर सवाल उठाता है।
ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है जो अक्सर उठता है, लेकिन यहाँ सीखने का मतलब कोई नई इन्फॉर्मेशन लेना या क्लास में बैठकर पढ़ना नहीं है।
तो फिर इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है यहाँ?
ग्रीक लिटरेचर में एक बहुत ही फेमस कहावत है, एक शब्दों का खेल है, एमथेन एपथेन, यानी उसने सीखा, उसने सहा। किसी चीज को सिर्फ थ्योरी में जानना और उसको एक्चुअली अपने शरीर पर सहकर एक्सपीरियंस करना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है।
हाँ, थ्योरी और प्रैक्टिकल का डिफरेंस।
सही, उन्होंने आज्ञाकारिता की डेफिनेशन नहीं सीखी, बल्कि दर्द के बीच आज्ञा मानने की जो एक्चुअल कीमत चुकानी पड़ती है, उसे अपने एक्सपीरियंस से सीखा।
मतलब नॉलेज को पूरे एक्सपीरियंस में बदलना। और इस एक्सपीरियंस के तुरंत बाद एक और शब्द यूज हुआ है, पूर्णता या परफेक्ट होना। अब देखिए, आजकल जब हम परफेक्ट शब्द सुनते हैं ना, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली किसी मशीन या गैजेट की तरफ चला जाता है।
हाँ, जैसे उसमें कोई डिफेक्ट हो और उसे फिक्स कर दिया गया हो।
एकदम, हमें लगता है कि परफेक्ट होने का मतलब है कि शायद उनमें कोई सॉफ्टवेयर बग या टेक्निकल फॉल्ट था जिसे इन दुखों की टेस्टिंग से ठीक किया गया।
सही कहा, ये एक बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है आज के जमाने में।
यहाँ परफेक्शन का मतलब किसी मशीन को रिपेयर करना नहीं है। यहाँ जो ग्रीक शब्द यूज हुआ है टेलोस, उसका कनेक्शन किसी चीज के अंतिम लक्ष्य या फाइनल गोल से है।
अच्छा, तो अगर हम इसको सॉफ्टवेयर बग वाले एग्जाम्पल से हटा कर देखें, तो इस टेलोस को हम और कैसे समझ सकते हैं? आप इसे एक स्टूडेंट के ग्रेजुएट होने से रिलेट कर सकती हैं? या जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को तराशकर जब एक मूर्ति बनाता है, तो उस पत्थर में कोई बीमारी या बग नहीं था, वो बस तराशे जाने के बाद अपने फाइनल गोल तक पहुंच गया।
ओह, आई सी।
यीशु के लिए इस पूर्णता या टेलोस तक पहुंचने का मतलब था अपनी ह्यूमन लाइफ के इस स्ट्रगल से सक्सेसफुली गुजरकर वापस अपने इटर्नल यानी शाश्वत स्थान पर पहुंचना, ताकि वो इंसानों के लिए एक स्ट्रांग ब्रिज बन सकें।
तो ये ग्रेजुएशन थी, करेक्शन नहीं। ये सारी हिस्टोरिकल और लिंग्विस्टिक डिटेल्स ऑनेस्टली बहुत फैसिनेटिंग है, लेकिन तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मेरा दिमाग बार बार इस सवाल पर आ रहा है कि ये मल्किसदेक की कानूनी बहस, ये टेलोज, उस वक्त के उन नॉर्मल लोगों के लिए रियल वर्ल्ड में इसका क्या सिग्निफिकेंस था?
इसका सीधा कनेक्शन उनकी उस वक्त की सोशल और आर्थिक हालात से है। देखिए, उस दौर में जो अर्ली क्रिश्चियंस थे, उन्हें उनके इस नए विश्वास की वजह से सोसाइटी ने पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया था।
बॉयकॉट मतलब सिर्फ लोग उनसे बात नहीं करते थे या कुछ और?
नहीं नहीं, सिर्फ सोशल नहीं बल्कि इकोनॉमिकली भी बॉयकॉट कर दिया गया था। उन्हें उनके बिजनेस गिल्ड से निकाल दिया था, उनके परिवारों ने नाता तोड़ लिया था, उन्हें एकदम मार्जिन्स पर यानी समाज के बिल्कुल किनारे ढकेल दिया गया था।
तो वो लोग तो बहुत हिलाए हुए और डरे हुए होंगे।
बहुत ज्यादा। उन्हें लग रहा था कि अगर हम अपना ये नया रास्ता छोड़ दें और वापस उसी पुराने सोसाइटी के सिस्टम में चले जाएं, तो लाइफ फिर से इजी हो जाएगी, बिजनेस वापस चल पड़ेगा, स्टेटस मिल जाएगा।
तो ऐसे आर्थिक और मानसिक डर में जीने वाले लोगों को लेखक इन भारी भरकम आर्ग्यूमेंट से क्या समझाना चाहता है?
लेखक उनके दिमाग में बसे पूरे ब्रह्मांड के नक्शे को ही पलट रहा है।
वो कैसे?
वो उनसे कह रहा है कि देखो, ये बात सच है कि सोसाइटी ने तुम्हें बाहर निकाल दिया है, लेकिन इस मीडिएटर, इस यीशु के जरिए तुम अब इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े सेंटर यानी ईश्वर के सिंहासन के पास आ गए हो।
वाह, मतलब उसने उनका पूरा पॉइंट ऑफ व्यू ही बदल दिया।
बिल्कुल। वो कह रहा है कि अगर तुम डल कर वापस उस पुरानी जिंदगी में लौटोगे ना, तो तुम शायद सोसाइटी के सेंटर में जरूर आ जाओगे, लेकिन तुम उस असली और हमेशा रहने वाली रियलिटी से दूर ब्रह्मांड के मार्जिन्स पर चले जाओगे।
सही बात है। सोसाइटी की नजर में भले ही वो जीरो थे, लेकिन कॉस्मोस की नजर में वो सबसे सेंटर में थे। ये एक बहुत बड़ी मेंटल शिफ्ट थी।
एकदम सही।
अब अगर हम इन सारी बातों को समेट कर आज की लाइफ में देखें, तो आपके हिसाब से इसके क्या प्रैक्टिकल लेसन हो सकते हैं?
देखिए, दो बहुत क्लियर मैसेज निकलते हैं। पहला तो ये कि प्रार्थना या प्रेयर किसी डरपोक इंसान का रियलिटी से भागने का रास्ता नहीं है। ये उस अल्टीमेट पावर तक पहुंचने का मीडियम है जहां से हमें सही वक्त पर हेल्प मिलती है।
हाँ, बिल्कुल।
जब खुद वो पावरफुल मीडिएटर इतने भारी संकट में आंसुओं के साथ ईश्वर पर पूरी तरह डिपेंड हो सकता है, तो हमें भी अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स में हेल्प मांगने से कतराना नहीं चाहिए।
सही कहा। और दूसरा मैसेज मुझे लगता है कि लीडरशिप को लेकर है। जो हमने स्टार्टिंग में सीईओ वाला एग्जाम्पल लिया था ना, वो यहाँ फिट बैठता है। आज के टाइम में जो भी लोग किसी पोजीशन ऑफ पावर में है, चाहे बिजनेस में, पॉलिटिक्स में या बस अपने घर में,
हाँ, उनके लिए बहुत बड़ा लेसन है।
उन्हें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि बेस्ट लीडर वो नहीं होता जो सिर्फ ऑर्डर पास करे, असली लीडर वो है जो लोगों की जमीनी रियलिटी, उनके पसीने और डर को समझता हो। क्योंकि जब आप अपनी खुद की मिस्टेक्स और वीकनेसेस को याद रखते हैं, तो आपका एटीट्यूड हार्श नहीं होता। एक तरह से एरोगेंस का सबसे बड़ा इलाज अपनी खुद की कमजोरियों का एहसास ही है।
मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ। उन्होंने वो सब कुछ फील किया जो हम करते हैं, और उसी स्ट्रगल को पार करके वो अपने उस टी लॉस या लक्ष्य तक पहुंचते हैं।
तो अगर हम डॉक्टर्स डे सिल्वा के इस पूरे एनालिसिस को समेटें, तो हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक पुरानी बुक का ट्रांसलेशन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल और कॉस्मिक जर्नी है। हमें एक ऐसा मीडिएटर मिलता है जो सिर्फ दूर आसमान में नहीं बैठा, बल्कि जिसने हमारी धरती की धूल और हमारे आंसुओं को सच में टेस्ट किया है।
सही कहा। और इस चर्चा के एंड में ना, मैं हमारे सुनने वालों को एक ऐसी बात पर सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूँ जिसे वो अकेले में बैठकर एनालाइज कर सकें।
जरूर, बताइए वो क्या थॉट है।
थॉट ये है कि अगर खुद ईश्वर के उस अंश को अपने टेलोस यानी पूर्णता तक पहुंचने के लिए और इंसानों को एक्चुअली समझने के लिए इतने दर्द, आंसुओं और भारी फ्रिक्शन वाले दौर से गुजरना पड़ा, तो ये हमारी आज की मॉडर्न सोसाइटी के बारे में क्या कहता है?
ये तो बहुत ही डीप सवाल है। आजकल हम सब तो यही चाहते हैं कि बस लाइफ में कोई दर्द ना हो।
वही ना, हम सब एकदम पेन फ्री और फ्रिक्शनलेस लाइफ चाहते हैं। हमारी सोसाइटी, हमारी टेक्नोलॉजी हमें यही सिखाती है कि हर तरह का स्ट्रगल बुरा है और उससे बचना चाहिए।
हाँ, हम हर प्रॉब्लम का शॉर्टकट ढूंढते हैं।
तो सोचने वाली बात यह है, क्या पता लाइफ के हर स्ट्रगल से भागने की, हर दर्द से बचने की हमारी ये जो जिद है, यही हमें हमारे अपने फाइनल गोल, हमारी अपनी उस पूर्णता तक पहुंचने से रोक रही हो। क्या बिना उस फ्रिक्शन से गुजरे, बिना थोड़े आंसू बहाए, हम कभी एक दूसरे के प्रति वो सच्ची सिंपथी डेवलप कर सकते हैं जो हमें असल में इंसान बनाती है? बस इस पर विचार कीजिएगा।